आस्था की आंखें हैरानी से फैल गई थी और वो सरप्राइज होकर बोली, लेकिन आपने कॉलेज क्यों खरीद लिया? अब आगे, हमने आपको कॉलेज खरीदने के लिए थोड़ी ना कहा था, हमने तो सिर्फ कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए कहा था। वही नानी माँ मुस्कराने लगी और मन में सोचने लगी, वाकई मेरी गोरी ने जरूर कुछ ना कुछ पुण्य किए होंगे जो इस जन्म में अरमान जैसा पति मिला। तो ये मुस्कराते हुए दूर से ही अपनी ब्लाउज लेकर वो दोनों मियाँ बीवी के बीच से सीधा अपने कमरे में चली गई थी। वहीं दूसरी ओर अरमान ने थोड़ा आगे बढ़कर आस्था को गोद में उठा लिया और मदहोशी भरी आवाज में बोला, मैं आपके लिए कॉलेज तो क्या पूरे शहर को खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं बस आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ। अरमान की ये बातें आस्था की आंखों को भिगा गईं और उसने अपना सिर अरमान के सीने में छुपा लिया था और अरमान मुस्कुराते हुए आस्था को अपने बेडरूम में ले आया, उसके ठीक बराबर में लेट गया था। उसका हाथ पकड़कर अरमान ने अपने चेहरे पर रख लिया और अपना हाथ आस्था के पेट पर रख लिया था। आस्था अरमान के इस एक्शन को देखकर हैरान थी, क्योंकि अरमान भले ही नॉर्मल और जेंटल वे में आस्था से पेश आ रहा था, लेकिन कुछ तो था जो आस्था को परेशान कर रहा था। आस्था ने सोचा कि शायद वो अपने पास्ट को लेकर कुछ ज्यादा ही सोच रही है, शायद इसीलिए अरमान की हरकतें कुछ खास पसंद नहीं आ रही हैं। लेकिन फिलहाल अरमान आस्था के पेट पर अपना हाथ फेरता रहा और फिर अचानक अरमान उठा और अपने होठों को आस्था के पेट पर रख दिया और वहां पर किस करने लगा था। आस्था हैरान हो गई, सोचने लगी कि शायद अरमान को पिता बनने की कुछ ज्यादा ही खुशी है, इसीलिए वो उसके साथ इतना ज्यादा प्यार से पेश आ रहा है। और जिस तरह से आस्था ने अरमान पर चिल्लाया था, लेकिन बदले में अरमान ने आस्था को सिर्फ प्यार ही प्यार किया था, तो कहीं ना कहीं आस्था खुद को खुशनसीब भी समझ रही थी। अरमान कितनी ही देर तक आस्था के पेट पर ही किस करता रहा। आस्था चौंक गई, उसे तो लगा कि शायद आगे बढ़ेगा, जैसे वो उसे प्यार करता है इस तरह से फिर प्यार करेगा, लेकिन ये क्या, अरमान तो तकरीबन 25 से 30 मिनट तक आस्था के पेट पर ही चूमता रहा। तब आस्था ने हल्का सा अपने हाथ अरमान के बालों में घुमा दिए और फिर अरमान की ओर देखकर बोली, आप क्या कर रहे हैं अरमान जी, कब तक इस तरह यहाँ चूमते रहेंगे? तब आस्था की आवाज़ सुनकर अरमान अपने ख्याल से बाहर आया और उसे एहसास हुआ कि वो कितनी देर से आस्था के पेट को किस कर रहा है। इतना ही नहीं, आस्था के नाभि के पास का सारा हिस्सा एकदम लाल हो गया था। तब अरमान तुरंत अपना हाथ आस्था के पेट पर फेरने लगा और फिर उसके पास आकर उसके होठों को किस करने लगा था। अरमान बड़े ही जेंटल वे में आस्था को प्यार कर रहा था, ताकि आस्था के पेट पर बिल्कुल भी जोर ना पड़े, किसी तरह का कोई भी उसे हर्ट ना हो। आस्था अरमान के प्यार से मुस्कुरा भी रही थी। अरमान ने कितनी ही देर तक आस्था को प्यार किया था, लेकिन उसने साथ किसी तरह का कोई फिजिकल रिलेशन नहीं बनाए थे, क्योंकि डॉक्टर रश्मि ने अरमान को साफ साफ बता दिया था कि आस्था ज्यादा मजबूत नहीं है, ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, वो कमजोर है, तो प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के कुछ हफ्ते उसे आस्था से दूरी बनाकर रखनी होगी। हालांकि ये दूरी अरमान को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं थी, लेकिन अपने बच्चों के लिए अरमान सब कुछ करने के लिए तैयार था। वेल, आस्था की खूबसूरती ही ऐसी थी कि उसके करीब जाने के बाद अरमान खुद को रोक नहीं पाता था और वाइल्ड हो जाता था, लेकिन अब तो जैसे तैसे उसने खुद को रोक रखा था। आस्था को किस करने, ढेर सारा प्यार करने के बाद उसने आस्था की ओर हसरत भरी नजरों से देखकर कहा, तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है आफत, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी खुशी को किस तरह से सेलिब्रेट करूं। बस दिल करता है बस तुम्हें देखता रहूं और तुम्हारे कदमों को जमीन पर न रखने दूं और हमेशा तुम्हें अपनी गोद में उठाए रखूं। दुनिया भर की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूं। तुम्हारे होठ हिलने से पहले जो कुछ तुम चाहो वो तुम्हें लाकर दे दूं। ऐसा बोलकर अरमान बहुत सारा प्यार आस्था को जता रहा था। वहीं आस्था के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आ रही थी, वो केवल मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी और जबरदस्ती की बनावटी मुस्कुराहट अरमान को दिखा रही थी, लेकिन कुछ तो ऐसा था जो आस्था को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। आस्था ने सोचा कि शायद वो अपने पास्ट की वजह से खुश नहीं हो पा रही है, इसीलिए अब आस्था ने डिसीजन लिया कि वो सबसे पहले अपने पास्ट का ही रोड़ा खत्म करेगी। अपने पास्ट का रोड़ा अगर वो एक बार खत्म कर देती है तो वो आसानी से अरमान के प्यार को महसूस कर सकती है। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए आस्था ने अपनी आंखें बंद की थी। तभी अरमान आस्था की ओर देखकर मुस्कुरा कर बोला, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी तुम्हारे जैसी हो और मेरी बेटी बिल्कुल तुम पर जाए। मेरी बेटी भी तुम्हारी जितनी ही खूबसूरत होगी, तुम्हारी जितनी मासूम होगी। आस्था शक भरे अंदाज में देखकर बोली, लेकिन बेटा भी तो हो सकता है अरमान जी, ये क्या आपने कब से बेटी बेटी बोले जा रहे हैं? बेटा भी तो हो सकता है और हो सकता है कि वो आपके जैसा ही हैंडसम हो। आस्था ने जैसे ही ये बताया, अरमान का चेहरा एकदम ही डार्क हो गया था और अचानक उसने आस्था के हाथों को झटक दिया था और बिना कुछ कहे दरवाजे से बाहर निकल गया था। आस्था अरमान के इस तरह के बर्ताव से हैरान हो चुकी थी। अरमान को क्या हुआ और उसने ऐसा क्या कह दिया कि अरमान को इतना बुरा लग गया कि वो उसे छोड़कर बाहर चला गया? आस्था अरमान के इस बर्ताव के बारे में कुछ देर सोचती रही, फिर उसने अपना सर झटक दिया। उसने सोचा कि शायद अरमान को कुछ काम याद आ गया होगा, इसलिए जल्दी में इस तरह से बिना एक्सप्रेशन दिए निकल गए होंगे, इसलिए उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वहीं दूसरी ओर अबीर सिंह राठौर को इस बात के बारे में पता चल चुका था कि अरमान के आदमी किसी भी पल उन आदमियों पर हमला कर सकते हैं, जो आदमी अबीर को शक्तिशाली और मजबूत बनाते हैं, क्योंकि उसे तो हर हाल में आस्था के आसपास रहना था। आस्था से दोस्ती की शुरुआत वो कर चुका था, लेकिन इतनी जल्दी वो पीछे नहीं हटना चाहता था, क्योंकि आस्था के करीब पहुंचने का उसे रास्ता मिल चुका था, दोस्ती का रास्ता। उसने आस्था को जबरदस्ती डांटकर भटकाकर हर तरह से देख लिया था, और अरमान किस तरह से आस्था के साथ था वो भी ये जानता था। इसलिए अबीर सिंह राठौर ने दोस्ती का रास्ता चुना, क्योंकि अगर वो दोस्त बनकर आस्था की जिंदगी में जाएगा तो एक दिन जरूर आस्था उसकी मोहब्बत को कबूल करेगी, और वो दिन अबीर सिंह राठौर के लिए सबसे बड़ा दिन होगा। तो बस इसी उम्मीद के साथ अब अबीर सिंह राठौर के दिमाग में एक आइडिया आ चुका था, और जल्दी अपने सेक्रेटरी अजीत के हाथों आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान की प्रोफेशनल ईमेल आईडी पर एक ईमेल भेज दिया था, जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ था कि उन लोगों को अबीर सिंह राठौर के आदमियों को मारने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने सभी आदमियों के साथ अरमान के सामने सरेंडर हो जाएगा और एक बार फिर अरमान को उसकी डेविल किंग की कुर्सी सौंप देगा। ये ईमेल आईडी उसने उन तक पहुंचा दी थी। वो जानता था कि जब तक वो ऐसे ही कुछ कुर्बानियां नहीं देगा तो वो आस्था के करीब नहीं जा पाएगा, और वो हर हाल में आस्था के करीब जाना चाहता था। वहीं दूसरी ओर वीर अपने पिता के ठीक सामने बैठा हुआ था। वीर घूर कर अपने पिता अमरीश को देख रहा था, क्योंकि अब वीर के सामने अपने पिता के साथ साथ अपनी माँ की भी पास्ट की सारी सच्चाई आ चुकी थी। फ्लैशबैक
कि किस तरह से अमरीश ने अपने कम्पेटिटर अभिमान यानी कि अरमान के पिता के कॉलेज में कम्पटिशन किया करता था, लेकिन अभिमान पढ़ाई में और हर चीज में एकदम स्मार्ट और तेज था, और सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा हैंडसम और डैशिंग लड़का था, तो कॉलेज की सारी लड़कियां अभिमान के आसपास ही घूमा करती थी, और ऊपर से अभिमान एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था, और जिसकी वजह से सभी प्रोफेसर उसे बेहद पसंद किया करते थे। लेकिन ये बातें, तारीफें अमरीश की आंखों में चुभा करती थीं। हालांकि अमरीश ने अभिमान से दोस्ती का नाटक किया, और दोस्ती की आड़ में उसने सबसे पहले अभिमान को पढ़ाई से दिल हटाया, उसे शराब वगैरह की लत लगा दी, लेकिन जब तक अभिमान को होश आया तब काफी देर हो चुकी थी और उसकी पढ़ाई का करियर खत्म हो चुका था, तो इसीलिए उसने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी थी और अपने काम धंधे पर ध्यान देने लगा था। लेकिन इस बीच वसुंधरा, जो कि कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी, वो अभिमान के प्यार में पड़ चुकी थी और उन दोनों ने शादी कर ली थी। फिर एक दिन जब अमरीश, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था, उसने वसुंधरा और अभिमान को एक साथ देखा तो उसके खून में आग लग गई थी। भला इस तरह से एक बेरोजगार आदमी की जिंदगी इतनी खुशहाल कैसे हो सकती है, क्योंकि अभिमान की जिंदगी बर्बाद करने के लिए उसने कुछ नहीं किया था, क्योंकि अभिमान की वजह से बचपन से लेकर उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी, क्योंकि सब लोग शुरू से ही अभिमान की तारीफ किया करते थे। अमरीश के माता पिता भी अभिमान को सपोर्ट किया करते थे, उसकी मिसालें उसे दिया करते थे, तो उसके अंदर एक आग सी लगी हुई थी, जिसका बदला उसने अभिमान को कॉलेज से रिस्ट्रिक्टेड करवाकर ले लिया था। लेकिन अब उसकी शादीशुदा लाइफ इतनी खुशहाल देखकर वो खुद को रोक नहीं पाया और उसने वसुंधरा को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया था, जिसमें अमरीश काफी हद तक कामयाब हो गया था। फ्लैशबैक एंड। लेकिन फिर भी अमरीश ने भले ही रोकर गिड़गिड़ाकर अरमान के सामने से अपने बेटे की जान बचा ली हो, लेकिन अभी भी अमरीश के पास तृप्ति का एक ऐसा सिक्का था, एक ऐसा पहलू था जिसके बाद वो अरमान सिंघानिया को घुटनों के बल बैठा सकता था। लेकिन अभी इस वक्त अमरीश कमजोर था, तो इसीलिए वो किसी तरह की कोशिश करने के बजाय सीधे सीधे तरीके से पहले अपने बेटे वीर की जिंदगी को सुरक्षित करना चाहता था। तब वीर ने अपने पिता की ओर देखकर बोला, मेरी माँ कहाँ है, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। तब अमरीश वीर की ओर देखकर मुंह बिगाड़ते हुए बोला, मुझे लगता है कि उस औरत से तुम्हें कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए, और वैसे भी वो औरत पागल हो चुकी है और वो हमारे किसी काम की नहीं है, तो इसीलिए प्रैक्टिकल सोचो और चलो यहाँ से। तब वीर ने घूरते हुए अपने पिता की ओर देखकर कहा, मेरी माँ पागल नहीं हो सकती, और उनके जैसी शातिर औरत इस दुनिया में कोई नहीं है। जो औरत इतनी शातिर है वो भला पागल कैसे हो सकती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मुझे जाकर देखना होगा। अब वीर मेंटल हॉस्पिटल की ओर रवाना हो चुका था, और जैसे ही वीर वहां गया, वहां अलग तरह का हल्ला मचा हुआ था। वसुंधरा ने एक औरत को काफी कंधों पर दांत से काट लिया था और वो औरत बुरी तरह से रो रही थी, तो सभी वसुंधरा को इस वक्त एक अलग सेल में रखा गया था। अब वीर के इंसिस्ट करने पर डॉक्टर ने उसे वहां जाने की इजाजत तो दे दी थी, साथ साथ उसे हिदायत देते हुए कहा कि वो औरत पागल हो गई है और वो तुम पर हमला भी कर सकती है। वीर डॉक्टर की बात सुनकर तिरछा मुस्कुराया, क्योंकि वो समझ चुका था कि उसके मन में क्या है क्या नहीं है, इसीलिए वीर जल्दी ही अपनी माँ की सेल में मौजूद था। वहीं वसुंधरा ने जैसे ही वीर को देखा तो वो उसे दांत काटने के लिए आगे आती है, लेकिन वीर ने तुरंत अपनी माँ के हाथों को पकड़ लिया और अपनी माँ के चेहरे की ओर देखकर फ्रस्ट्रेट होकर बोला, मॉम प्लीज ये नाटक बंद कीजिए और मैं यहाँ से और सिर्फ आपसे मिलने के लिए आया हूँ। और हाँ, अगर डैड का अटेंशन पाने के लिए आप ये सब ड्रामा कर रही हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि डैड ने ऑलरेडी आपको हमेशा हमेशा के लिए यहाँ छोड़कर जाने का प्लान बना लिया है और वो मुझे लेकर इस शहर को छोड़कर जाना चाहते हैं। जैसे ही वीर ने सपाट चेहरे के साथ ये बताया, वसुंधरा जो कि अभी अपने पागलपन के कैरेक्टर में पूरी तरह से डूबी हुई थी, अब सीरियस एक्सप्रेशन के साथ वीर को देख रही थी। अभी कुछ देर पहले वसुंधरा अपनी जीभ बाहर निकाल रही थी, कभी गोल गोल अपनी आंखों को घुमा रही थी, कभी अपने बालों को नोच रही थी। जब वीर की इस तरह की बातें सुनी तो उसने एकदम से ही अपना चेहरा डार्क कर लिया था और वीर की ओर देखकर गुरूर भरी आवाज में बोली, तो तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो? वैसे भी वसुंधरा को किसी के रहम कर्मों की कोई जरूरत नहीं है, वो इस सिचुएशन में वसुंधरा अपना ख्याल रख सकती है। ये बोलकर वसुंधरा वीर को घूरने लगी थी। वीर अपनी माँ की एकदम ऐसी आवाज़ सुनकर जोरों से हंसने लगा और अपनी मॉम को गले से लगा लिया था और खुश होकर बोला, मैं अच्छी तरह से जानता था मेरी माँ पागल नहीं हो सकती। अरे, मेरी मॉम दूसरों को पागल कर सकती है, भला मेरी मॉम खुद कभी पागल नहीं हो सकती है। यह कहकर वीर जोरों से हंसने लगा था। बस वसुंधरा के चेहरे पर भी अब अजीब सी घमंड भरी मुस्कुराहट थी। तभी वीर अपनी माँ के कंधों को पकड़कर बोला, आपने समय रहते अगर पागल बनने का नाटक नहीं किया होता तो शायद हम सबकी मौत हो चुकी होती। वो अरमान सिंघानिया हम सबको बड़ी बुरी मौत दे चुका होता, लेकिन आपने वक्त रहते पागल बनने की एक्टिंग करके मेरे साथ साथ डैड की और अपनी भी जान बचा ली है। लेकिन हम अरमान सिंघानिया पर अब इस तरह से हमला करेंगे कि वो सोच भी नहीं सकेगा। और वैसे भी खबर मिली है कि अरमान सिंघानिया बाप बनने वाला है, तो इस वक्त अगर हम उसकी बीवी पर हमला करते हैं तो उसको चोट बहुत गहरी लगेगी।